नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन जीवित है और वह हम सबसे बातचीत करता है। पिछले अध्ययन में हमने एक खास बात सीखा कि चंगाई के लिए परमेश्वर के पास जाएं और उससे कहें कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसकी इच्छा हम में पूरी होनी पाए और उसी को महिमा मिले। आज हम अपने अध्ययन को उन दो व्यक्तियों से आरंभ करते हैं जो यीशु का अनुसरण करने के लिए अनुमति मांगते हैं, जैसे कि यीशु उस पार जाने की तैयारी करते हैं। एक मनुष्य उसके पास आता है जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8:19 में पढ़ते हैं। और किसी शास्त्री ने आकर उससे कहा, गुरु जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। मित्रों, संभवतः यह शास्त्री जवान व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। यह शास्त्री भी उस भीड़ में था और निर्णय के साथ खिलवाड़ कर रहा था कि उसका अनुसरण करें या अनुसरण ना करें। वह नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। तब उसने देखा कि यीशु दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु और उसके शिष्य नाव की ओर बढ़ रहे हैं और उसे अपने मस्तिष्क में जल्दी निर्णय लेना था। इसलिए वह भीड़ से बाहर निकलकर आया और स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने गिरकर कहा, जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। शास्त्री ने अपना निर्णय ले लिया। प्रभु ने उसकी ओर देखा और उससे खुलकर और सरलता से कहा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 8:20 में पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। इस प्रभाव में यीशु मसीह इस जवान से कह रहे थे, क्या तुमने इसकी कीमत को जोड़ा या देखा है? हमारा प्रभु अपनी गरीबी को प्रकट कर रहे हैं। जब वे इस पृथ्वी पर थे तब जवान व्यक्ति ने अपने हृदय को खोला, तो हमारे प्रभु भी अपना हृदय खोलते हैं। मैं यह सोचता हूं कि उसने कुछ इस तरह कहा होगा, मेरा अनुसरण करने के लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक हम एक स्थान में जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी होटल या सराय में ठहरने का बंदोबस्त नहीं रहता है, यहां तक कि हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों को घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। यह प्रभु यीशु की दरिद्रता है और दरिद्रता श्राप का एक भाग है जिसे उसने सहा। हमें यह नहीं बताया गया है कि इस जवान व्यक्ति ने उसका अनुसरण किया या नहीं। मैं हमेशा महसूस करता हूं कि उसने किया। मैं सोचता हूं कि जब नाव को पानी से बाहर खींचा गया तो वहां यह जवान व्यक्ति उस नाव में था जिसने प्रभु के लिए निर्णय लिया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 8:21 में आगे पढ़ते हैं, उसके चेलों में से किसी ने उससे कहा, प्रभु पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता को दफन करूं। यहां पर एक जवान व्यक्ति है जिसने प्रभु का अनुसरण करने का फैसला लिया, परंतु वह पहले अपने पिता को दफनाना चाहता है। इस घटना को बहुत ही गलत तरीके से समझा गया है। हमारे अंदर ऐसा विचार आता है कि उसका बूढ़ा बाप मर गया है और परिवार उसके दफनाने की प्रक्रिया के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं या तैयारियां हो रही है। जब वह उत्तर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु बहुत कठोर हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 8:22 में पढ़ते हैं, परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यीशु के ऐसा कहने का क्या मतलब है? कैसे मुर्दा मुर्दे को दफना सकता है? डॉक्टर एडम स्मिथ, जो मध्य पूर्व में एक प्रभावी व्यक्ति था जिसने एक सहायक पुस्तकें लिखी है, वह एक स्थान पर एक घटना को बताते हैं जहां पर वह एक अरबी को मार्गदर्शन के लिए लेना चाहते हैं। उसने उसे बताया कि वह कहां जाना चाहता है और एक जवान व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वह जवान एक निश्चित गांव में मिलेगा जो एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक होगा। डॉक्टर स्मिथ उस गांव में गए और उसने उस जवान से उसका मार्गदर्शक होने के लिए कहा, मुझे पहले मेरे पिता को दफनाना है। और उसके घर के सामने एक बूढ़ा सज्जन बैठा हुआ था जो भला चंगा और तगड़ा था, जिससे कि आप उसे देखकर खुश हो जाएं। वास्तव में वह जवान अरबी था। अरबी का क्या मतलब था? कि वह अपने पिता को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने पिता की देखभाल उसके मरने तक करनी है। पिता की जिम्मेदारी पुत्र की थी। प्रभु यीशु ने उस जवान से कहा जो उसके पास आया था कि किसी को तुम्हारे पिता की देखभाल करने दो या पिता को स्वयं ही देखभाल करने दो। मित्रों, क्या वह आपको प्रभावित करता है? बिना कुछ महसूस किए जब उसने यह कहा, मैं नहीं सोचता कि वह था। यह मेरा मानना है कि हमारा प्रभु इस जवान को एक निर्णय लेने की स्थिति में ला रहे थे, क्या वह मसीह को पहला स्थान देंगे या देने जा रहा है या नहीं। जब उस जवान ने निर्णय लिया तो प्रभु यीशु ने संभवतः उससे कहा होगा, तब तो तुम घर वापस जाओ और अपने पिता की देखभाल करो। कई वर्ष पूर्व एक जवान महिला थी जिसका पिता काफी बूढ़ा था। वह एक प्राचारिका या सेविका बनी और सेवकाई के लिए दूर चली गई और उसने अच्छा काम भी किया। जब वह कई वर्षों के बाद घर लौटी तो उसने अपने पिता को पूर्णतः असहाय पाया। वहां पर कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता और वह बेटी को कोस रहा था कि उसने उसे छोड़ दिया है और उसे मसीही नहीं बन पाने के लिए भी उसे कोस रहा था। उसके पिता ने मसीह के लिए कभी भी निर्णय नहीं लिया, इसलिए वह घर में रुक गई और उसकी देखभाल कर आराम और संगति देती रही। बूढ़ा व्यक्ति इस सेवा के द्वारा वास्तव में हिल सा गया और इस समय के दौरान में उसने मसीह के लिए निर्णय लिया। मेरा विश्वास है कि इन सब बातों में प्रभु उस बहन का मार्गदर्शन कर रहे थे, परंतु आरंभ काल में एक समय था जब उसे निर्णय लेना था कि वह सेवा के लिए जाए और मसीह को प्रथम स्थान दे या ना दे। हो सकता है कि उस प्रकार की स्थिति इस जवान व्यक्ति के साथ हो जिसके बारे में मत्ती हमें यहां पर बताते हैं। आगे हम देखेंगे कि यीशु गलील की झील में आंधी को शांत करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे चल पड़े। मित्रों, हम पांचवें चमत्कार में आ गए हैं। इसका शरीर की चंगाई से कोई लेना देना नहीं है, परंतु एक भौतिक चमत्कार प्रकृति के लिए एक महत्व रखता है। यहां पर प्रभु यीशु के सामर्थ्य का प्रदर्शन किया गया है और मैं विश्वास करता हूं कि आदम के पास भी वही सामर्थ्य उसके पाप में गिरने से पहले था। अब हम इसे प्रभु यीशु में देखते हैं। अंतिम आदम में इस प्रभुत्व का प्रकटीकरण है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और देखो समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था। मित्रों, यह कोई साधारण तूफान नहीं था। हमने परीक्षा की घड़ी में देखा था कि शैतान थोड़े समय के लिए उसे छोड़कर चला गया था, परंतु ज्यादा समय के लिए नहीं। मैं सोचता हूं कि यह तूफान वास्तव में शैतान की ओर से था। यह प्रभु यीशु को नाश करने की एक कोशिश थी। आप ध्यान दीजिए कि हमारे प्रभु सो रहे थे। यह एक बहुत ही मानवीय दृश्य मत्ती हमें देते हैं। यीशु इतना अधिक थक गए थे कि तूफान में भी वे सो रहे थे। यह कुछ और भी प्रकट करता है, वह तूफान में भी सो सकते हैं, जबकि मैं नहीं सो सकता। मैं तूफान के समय में थोड़ा भयभीत होता हूं और शिष्यों का भी यही हाल था। हम मत्ती उसके 8 अध्याय के 25 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, वे उसके पास आए और उन्होंने यह कहकर उसे जगाया, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उनके पास कितना थोड़ा विश्वास था। आप ध्यान दीजिए कि वह परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। मत्ती 8 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई। हम देखते हैं कि उसने शिष्यों को उनके विश्वास की कमी के कारण डांटा और तत्पश्चात तूफान और समुद्र को डांटा। लूका भी शब्द डांटा का उपयोग करते हैं। उसने लहरों को शांत कर दिया, जैसे हम कुत्ते के थूथन में रस्सी बांधते हैं, और तूफान बिल्कुल शांत हो गया। यद्यपि यह सच है कि इस समय इन मनुष्यों ने बहुत थोड़ा विश्वास का प्रदर्शन किया, एक दिन आया जब उनके छोटे से जीवन में तूफान का उत्पीड़न टूट पड़ा और मैं कोई भी लेख नहीं पाता जिसमें उनमें से कोई चिल्लाया कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। इसके अलावे हम प्रेरितों के काम उसके 4:29 में पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाएं। यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। ओह, हम कैसे उस प्रकार के साहस और भरोसे को इन दिनों में प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए कि तूफान को शांत करने के चमत्कार के द्वारा अपने शिष्य के ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला है। हम आगे मत्तयी सुसमाचार 8:27 में पढ़ते हैं, और वे विस्मित होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। वह जो नीति देता है वही इसे लागू और सक्रिय कर प्रदर्शित भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि यीशु 2 गदरेनियों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं जो छठवां चमत्कार और आश्चर्यचकित करने वाला है। हम लोग इसके वर्णन में नहीं जाएंगे, परंतु यह दुष्ट आत्मा को निकालने से संबंधित है। हम मत्ती 8:28 को पढ़ते हैं, और जब वह दूसरी ओर गदरेनियों के प्रदेश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वे इतने उग्र थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता था। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु गदरेनियों के प्रदेश में है, जैसा कि आज भी इसे पुकारा जाता है। जो लोग यहां पर रहते थे वे गाद गोत्र से थे। पुराने नियम में जब इसराइलियों के बीच में जमीन का बंटवारा हुआ तो गाद गोत्र यर्दन नदी के गलत क्षेत्र में बस गया। उन्हें क्या हुआ? वे सूअरों का व्यवसाय करने लगे, जो कि यहूदियों के लिए ऐसा करना उचित नहीं था। एक बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अगली बार आज्ञा नहीं मानने से अधिक परेशानी नहीं होती है। पहले से ही आप उसकी इच्छा और मार्ग से हटकर चल रहे हैं। इसलिए जब यीशु ने उस प्रदेश में प्रवेश किया तो उसका सामना 2 मनुष्यों से हुआ जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। कहीं पर इसका अनुवाद शैतान भी किया गया है, जो सही नहीं है। सही अनुवाद दुष्ट आत्मा ही है। ये मनुष्य बहुत ही खतरनाक थे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। हम मत्तयी सुसमाचार 8:29 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहां हमें समय से पहले यातना देने आया है? यह चमत्कार एक आश्चर्यजनक क्षेत्र को खोलता है जिसके बारे में हम दुर्भाग्यवश बहुत थोड़ा ही जानते हैं। इस चमत्कार के महत्व को समझना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम दुष्ट आत्मा के बारे में अधिक नहीं समझते, या समझ की कमी के कारण। मैं व्यक्तिगत रीति से विश्वास करता हूं कि चमत्कार में दुष्ट आत्माओं का शामिल होना ही एक बड़ा चमत्कार है जिसे उसने किया। हम मत्ती 8:30-31 में आगे पढ़ते हैं, कुछ दूरी पर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माएं उससे यह कहकर विनती करने लगी, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें सूरों के झुंड में भेज दे। मित्रों, किसी कारणवश दुष्ट आत्मा चाहते हैं कि उन्हें शारीरिक भौतिक वास्तविकता मिले। ऐसा लगता है कि उन्हें भौतिक वस्तु बनने के बारे में चिंता थी। वे सूरों के झुंड में बसने के लिए भी संतुष्ट थे। हम मत्ती 8:32 में आगे पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकल कर सूअरों में समा गई, और देखो वह पूरा झुंड वेगपूर्वक ढालू किनारे से समुद्र में जा पड़ा और डूब मरा। सूअरों के झुंड को दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर रहने के बजाय मरना ठीक लगा। मानव जाति थोड़ा इससे भिन्न है। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित या पीड़ित हैं। मूसा इलियाह सच्चे रूप में अलौकिक सामर्थ का प्रदर्शन हमें दिखाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के समय में आज लगता है कि हम ऐसे वातावरण में बढ़ रहे हैं जहां हम अधिक से अधिक दुष्ट की शक्तियों का प्रदर्शन देखते हैं। हमारे बारे में इसके बहुत से प्रमाण हैं, बहुत से उदाहरण हैं, और उन सबको पहचानना कठिन है, और हमेशा यह खतरा बना रहता है कि आप नाव पर जा रहे हैं और कह रहे हैं, कि मैं विश्वास करता हूं कि फलना व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। हमें ऐसे करने से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह डाइनों की खोज करने के जैसा है। फिर भी बहुत से लोग हैं जो आज भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। कई वर्ष पूर्व जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था, तब असंतुलित मनोविज्ञान की पदवी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की। एक व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच में काम करता था जिसे मैं जानता था। वो मसीही था और एक डॉक्टर था, और उसने बताया कि वहां के लोगों की देखभाल करना कितना कठिन है। लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं जिसमें शैतानी शक्ति का प्रभाव रहता है। यह एक मजेदार बात है कि यह दुष्ट आत्माएं कैद में नहीं रहना चाहती थी। वे कुछ निश्चित दुष्ट आत्माओं के कैद होने के बारे में जानती थी जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं, जैसा हम यहूदा की पत्री में उनके विषय में पाते हैं। ये दुष्ट आत्मा उस संसार में अपने आप को कार्यान्वित कराना चाहते थे। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 8:33-34 पद में आगे पढ़ते हैं। चरवाहे भागकर नगर में गए तथा दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों पर जो कुछ बीता था तथा इसी के साथ साथ सारा हाल कह सुनाया, और देखो सारे नगर के लोग निकलकर यीशु से मिलने आए, और जब उन्होंने उसे देखा तो उससे विनती की कि हमारे प्रदेश से बाहर चला जा। यह निश्चित रूप से व्यंग्यात्मक है कि नहीं? इन लोगों को यीशु से बढ़कर अपने सुअर चाहिए थे। मेरा विश्वास कीजिए कि यह गदरेनियों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। आज भी बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह से बढ़कर अपने सुअरों को प्राथमिकता देते हैं। मित्रों, यहां पर अध्याय 8 समाप्त होता है, परंतु हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए अध्याय 9 में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में यीशु और 6 चमत्कार करते हैं। मती को बुलाते हैं और फरीसियों के साथ तर्क करते हैं, और गलील में अपनी सेवकाई को बनाए रखते हैं। इन्हीं विषयों को हम इसमें पाते हैं। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने 6 चमत्कारों को देखा था जो यह प्रदर्शित करते हैं कि राजा के पास नीति को लागू करने और सक्रिय करने का सामर्थ्य है जिसे उसने सुनिश्चित किया है, और जो अध्याय हमारे सामने है उसी विचार को निरंतर आगे बढ़ाता है। हम उसे शारीरिक चंगाई करते हुए देखते हैं। एक है जिसका मैं एक अलौकिक वर्गीकरण करता हूं, मृतकों का जी उठना, और आत्मिक चमत्कार एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना है। आगे हम देखते हैं कि यीशु वापस कफरनहूम में आते हैं। हम मत्तयी रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, वह नाव पर बैठकर पार गया और अपने नगर में आया। यीशु ने गदरेनियों के प्रदेश को छोड़ दिया और कफरनहूम को वापस आया, क्योंकि लोग उसे नहीं चाहते थे। हम मत्तयी रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और देखो कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे पुत्र साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। हमें मरकुस रचित सुसमाचार में इस घटना का वर्णन मिलता है। मरकुस हमें बताते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को घर के छत से नीचे उतारा गया और प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया और चंगाई प्रदान की। चंगाई और पापों की क्षमा एक दूसरे से जुड़े हैं। हम मत्ती उसके 9 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, और देखो शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। शास्त्रियों का यह मानना था कि प्रभु इस लकवे के मारे व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाएगा। प्रभु उनके हृदय की बुराइयों और मन के विचारों को जानकर उनसे पूछा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि चल और फिर। वे उसका उत्तर नहीं दे सके, परंतु यदि वे उसका उत्तर देते तो इस प्रकार से कहते, ठीक है, हमारे लिए एक जितना महान है दूसरा भी उतना ही है। तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 6-7 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठकर अपने घर चला गया। जब लकवा से पीड़ित व्यक्ति उठा और चला तो इसका मतलब हुआ कि जो उसे चला सकता था वह उसके पाप को भी क्षमा कर सकता था। मेरे प्रिय मित्र, मैं और आप पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं, केवल प्रभु यीशु ही है जो ऐसा कर सकता है। और जबकि हम पापों को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो हम मनुष्य को भी नहीं चला सकते हैं। शैतान एक धोखेबाज है और हमें उन चंगाइयों के बारे में जांच पड़ताल करना चाहिए जिसके बारे में आज हम सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर के मार्ग में ना आए जिसे वह करता है, और आइए हम इस बात को स्पष्ट करें कि वही महिमा पाए। हम आगे देखते हैं कि यीशु मत्ती को बुलाते हैं। हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी की चौकी में बैठे हुए देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। मत्ती सिर्फ एक पद के साथ अपने बुलावे के विषय में बताकर शालीनता के साथ आगे बढ़ता है। लूका हमें बताते हैं कि मत्ती ने एक बड़े रात्रि भोज का प्रबंध यीशु के सम्मान में रखा। हम देख सकते हैं लूका 5 अध्याय उसके 27 से 29 पद में स्पष्ट रूप से यह घटना रात्रि भोजन के समय घटी। मत्ती ने अपने बहुत से चुंगी लेने वाले मित्रों को इस रात्रि के भोज में बुलाया क्योंकि वह चाहता था कि वे भी यीशु मसीह को जानें। हम मत्ती 9 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है कि जब वह घर में भोजन करने बैठा तो देखो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। और जब फरीसियों ने यह देखा तो उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? फरीसी लोग चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ भोजन करने पर विश्वास नहीं रखते थे। आज भी बहुत से संत लोग हैं जो इसी प्रकार का विचार रखते हैं। पापियों को रात्रि भोज में बुलाना तकलीफ देह नहीं है क्योंकि वे ही लोग हैं जिन तक मसीह के लिए पहुंचना है। मित्रों, पापियों के साथ थोड़ा संपर्क रखना हमारे लिए आवश्यक है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब उसने यह सुना तो कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। यीशु एक महान वैद्य हैं। वह मानव जाति को उनकी मूल समस्या अर्थात पाप से चंगाई देने के लिए आए हैं। यह हमारे बहुत से छोटे मसीह समूह हैं जो अपना प्रीति भोज और मेल मिलाप की सभा रखते हैं और उधार नहीं पाए हुए लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं। उनसे कहना चाहिए यदि उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति वहां आता है तो अधिकतर मसीही उन्हें दूर रखते हैं। क्या मैं आपसे कहूं, मैं सोचता हूं कि कुछ लोग जो मसीही समूह कहलाते हैं वे अपने अस्तित्व में और जिस प्रकार वे एक दूसरे से मिलते हैं पापी हैं। और हम आगे मत्ती इसके 9 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मित्रों, मत्ती यहां पर पुनः पुराने नियम से होशे उसके 6 अध्याय के 6 पद का उद्धरण दे रहे हैं। जब यीशु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, वह फरीसियों को भी शामिल कर सकता था क्योंकि वे भी पापी थे। वास्तव में हम सब इसमें शामिल हैं। रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आगे हम पुराने वस्त्र और पुराने मस्कों का दृष्टांत देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यूहन्ना के शिष्य यीशु मसीह को देख रहे थे। जो भी हो, इन लोगों में से कुछ लोग मूलतः यूहन्ना के ही शिष्य थे। हम अन्द्रियास और फिलिप के बारे में जानते हैं कि वे थे। वे यहां आए और यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे और यूहन्ना के दूसरे शिष्यों ने कहा, देख यहां पर कुछ हो रहा है, वह जो हम करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है और हम अचंभित होते हैं कि ऐसा क्यों। यूहन्ना जैसे आरंभ में बताया गया एक पुराने नियम का भविष्यवक्ता था। वह पुराने नियम से नए नियम में घोषणा करने के लिए आया कि मसीह आ गया है। मलाकी ने भविष्यवाणी की थी कि संदेश वाहक यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने को आएगा। और यूहन्ना ने कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह प्रभु के लिए मार्ग तैयारी करना है, वह थोड़ी ही देर में हमारे मध्य में होगा। और जैसा यूहन्ना ने कहा था वह आ गया। अब हमारे प्रभु एक महान सिद्धांत को घोषित करने और सत्य को प्रकट करने जा रहे हैं या व्यवस्था बदलने जा रहे हैं। मित्रों, यहां पर हमारा समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य ही इस अध्ययन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज आप भी विचार करें कि प्रभु यीशु आपके जीवन में चंगाई दे सकते हैं। चाहे कोई भी बीमारी, चाहे कोई भी पाप आपके जीवन में क्यों ना हो, यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं और उसे क्षमा मांगते हैं, उसके निकटता में आते हैं, तो निश्चय ही वह आपको चंगा करने में और आपके पापों को क्षमा करने में सामर्थ्यवान है। आज आप निर्णय लें कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको निर्णय लेने में सहायता करे, ताकि आप प्रभु के निकटता में आ सकें। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्यवचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोता, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।